कई बातें कर दी है आराधना के दौरान. मैं सोच रहा हूँ अब मैं क्या प्रचार करूँ.
And Franco's encouraged us as well.
और फ्रैंको ने भी हमें प्रोत्साहन दिया.
So if you have your Bibles, let's quickly turn to 1 Peter 4.
अगर आपके पास शास्त्र है तो जल्दी से ही एक पत्रस चार को खोलें.
I'm just going to keep it short, just in the interest of time.
और समय कम है इसलिए मैं छोटा ही रखना चाहूँगा.
So we can read from 1 Peter 4 verse till verse 4.
और एक पत्रस 3, चार वचन तीन तक हम पढ़ेंगे.
And then I'll read verse 7.
फिर वचन सात पढ़ूंगा.
7 till the end.
सात से लेकर अंत तक मैं पढ़ूंगा.
You can actually read the whole chapter later at home just to save time. I'm just cutting short.
घर जाकर आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं. मैं छोटा रखूंगा.
The Passion Translation reads this chapter as living in the grace of God.
और अध्याय इस बात को लेकर है परमेश्वर के अनुग्रह में जीना.
So I'll read it in English and then Dipina can read it in Hindi.
रायन अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी.
Since Christ through innocence suffered in his flesh for you, now you also must be a prepared soldier, having the same mindset, for whoever has died in his body is done with sin. So live the rest of your earthly life no longer concerned with human desires, but consumed with what brings pleasure to God. For you have already spent enough time with unbelievers. Love to do living in debauchery, sensuality, partying, drunkenness, wild drinking, parties, and the worship of demons. They marvel that you no longer rush to join them in excesses of their corrupt lifestyles, and so they vilify you. But one day they will have to give an account to the one who is destined to judge the living and the dead. This is the reason the gospel was preached to the martyrs before they gave their lives. Even though they were judged by human standards, now they live in spirit by God's standard.
इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुराई अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पना और घृषित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हम ने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ. इसलिए वे अचंभा करते कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं. पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे.
Verse 7, since we are approaching the end of all things, be intentional, purposeful, and self-controlled so that you can be given to prayer. Above all, constantly echo God's intense love for one another, for love will be a canopy over a multitude of sins. Be compassionate to foreigners without complaining. Every believer has received grace gifts, so use them to serve one another as faithful stewards of the many-colored tapestry of God's grace.
सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है. बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए.
Can I just pray? Just shut our eyes and just pray. Lord Father, we just thank you for your word.
प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद.
Lord, this morning I pray that you will stir our hearts.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुबह आप हमें जागरूक करेंगे.
And that we would let your word come and change our hearts and do the things that you called us to do.
और आपका वचन हमारे हृदय में आकर वह कार्य करेगा जिसके लिए आपने हमें बुलाया है.
Lord, I pray for myself and Deepina even as Lord, she translates and I bring the word.
और प्रार्थना करते प्रभु जैसे हम यह वचन लेकर आ रहे हैं
that you would help me to speak with clarity and accuracy lord
प्रभु मदद करो कि आप हमें स्पष्टता से बात करने के लिए
I ask you holy spirit to just come and be with us this morning
पवित्र आत्मा आओ और हमारे साथ रहो इस सुबह
in jesus name
यीशु के नाम में
Amen. All right, the title of this message is Living in the Grace of God.
और इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करना.
And as I was reading this passage, one of the things that struck me straight away.
और जैसे मैं यह अध्याय पढ़ रहा था एक बात ने मेरे मन को पकड़ लिया
is what Peter writes in just the first verse itself
और जो पत्रस पहले ही वचन में लिखता है
says, since Christ though innocent suffered in his flesh for you
और जैसे मसीहा ने शरीर में होकर दुख उठाया
Now you also must be a prepared soldier
और वैसे ही तुम्हें भी एक तैयार सैनिक की तरह होना है
having the same mindset for whoever has died in his body is done with sin
और समान धारणा करो क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है
You know, be like a soldier is what Peter is saying.
और यहाँ पत्रस बता रहा है कि आप एक सैनिक की तरह हो जाओ
You know, when you look at a soldier, when he signs into an army,
और देखो जब एक सैनिक एक सेना में प्रवेश करता है
he is actually signing his death warrant in one sense.
और वह अपना डेथ वारंट को साइन कर रहा है अगर आप देखें तो
Because he is saying, I'm going to give my life to the nation, whether I'm going to live or die, this is my life, I'm going to save the nation or the country.
क्योंकि वह यह बोल रहा है कि यदि मैं जीऊं या मरूं मैं अपना प्राण राष्ट्र के लिए देने
वाला हूं. And Peter is saying, we must be prepared like a soldier.
और पत्रस बता रहा है कि हमें भी सैनिक की तरह तैयार होना
You know, when you and I accepted Jesus,
जब आपने और मैंने यीशु को स्वीकार
and maybe some have just accepted Jesus now and some maybe years ago
और शायद कुछ ने अभी ही स्वीकार किया और कुछ ने कई साल पहले
what you've actually done is you have signed and you have said Jesus I want to give this life to you
तो आपने ये किया है आपने हस्ताक्षर कर कहा है प्रभु मेरा जीवन मैं तुम्हें दे रहा हूँ
which means that you're saying Lord it doesn't matter even if I'm persecuted for preaching the gospel
और आप कह रहे प्रभु अगर मेरा तिरस्कार होए तब भी मैं तेरे पीछे चलूंगा समाचार बांटूंगा
That's what it means to be a soldier.
और सैनिक होने का अर्थ यही है
Being ready to get into battle.
कि आप युद्ध में प्रवेश करने के लिए तैयार है
the meaning of mindset means attitude.
और मन की धारणा का अर्थ यह है स्वभाव
also means an understanding to think.
और उसका अर्थ ये भी है कि आप सोचने की समझ रखते
हैं Philippians 2:5 says let this mind be in you which was also in Christ Jesus
और फिलिपियों के अध्याय में लिखा है आप में वैसा मन रहे जैसा मन यीशु मसीह में था
The NLT version says you must arm yourself with the same attitude as he had.
और एक अनुवाद उसका ऐसा है कि आपको अपना स्वभाव उसी की तरह बनाना है जैसा यीशु मसीह का था.
What is this attitude that Peter is talking about that Jesus had that we should have as Christians?
और पत्रस क्या कह रहा है कि ये स्वभाव जो मसीह के पास था वह हम में होना है.
And we're going to look at just maybe a few of those characteristics.
अगर आप कुछ वैसे चरित्र देखें तो
And we know that Jesus came and died for the church.
आप जानते हैं कि यीशु आया और कलीसिया के लिए मर गया.
His whole life was about reaching out to people and seeing the lost saved.
और उसका जीवन इसी के लिए था कि वह भटके हुए तक पहुंचे और उन्हें उद्धार दे.
Ephesians 5:25. Christ loved the church and gave himself up for it.
कि यीशु कलीसिया के लिए उसने अपने प्राण दे दिए
If there's one reason that Christ came is because he loved you and me and he loved the people
और एक वजह जिसके लिए मसीह आया वह यह है कि वह आपसे और मुझसे और संसार से प्रेम रखता
था There's one reason that he gave himself up on the cross was because he loved the church
और एक
And we see a beautiful prayer that Jesus makes to his father in John 17. And this is one of the most beautiful moments where the son is talking to the father. And what is he doing in that communication? He's praying for his disciples that God would protect them, the father would keep them.
वह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि पिता उनका संभाल करेगा.
That they, though they are in the world, but they will not be consumed by the world.
दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया की बातों से बह नहीं जाएंगे.
But he is not only concerned about the disciples then.
लेकिन वो शिष्यों को लेकर वो चिंतित नहीं है.
But in John 17 we see he is praying to the Father even for the future believers, the ones who are yet going to come to the Lord.
लेकिन यूहन्ना की किताब में हम देखें जो आने वाले विश्वासी होने वाले हैं वह उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा
है. So in verse 21
और 21वें वचन में वह कहता है मैं उनके लिए प्रार्थना करता
हूँ. All to be joined together as one.
कि वो सब एक मिलकर हो जाए.
Even as you and I, the Father, are joined together as one.
जैसे मैं और आप पिता एक साथ जुड़े हुए हैं.
I pray for them to become one with us.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे साथ एक हो जाएंगे.
So that the world will recognize that you have sent me.
कि दुनिया पहचान लेगी कि तुमने मुझे भेजा है.
What an amazing heart of Jesus.
ये प्रभु का यीशु का इतना खूबसूरत हृदय है.
His heart to see the church united, the body come together.
वो चाहता है उसका हृदय है कि वो देखे कलीसिया की देह एक साथ हो.
For what? For one purpose.
क्यों एक ही मकसद के लिए.
That the people may know that the Father has sent Jesus.
ताकि लोग जान ले के पिता ने यीशु को भेजा है.
So that the world would know that Jesus is the living God.
ताकि संसार जान ले के यीशु जीवित परमेश्वर
है. And that one can receive eternal life only through Jesus.
ताकि एक अनंत काल का जीवन पाए केवल यीशु मसीह के
द्वारा. So this morning, brothers and sisters, you and I are called to be ambassadors of Christ.
तो इस सुबह आप और मैं मसीह के मुंह बोलने वाले कहने के लिए बुलाए गए हैं.
You know, it's sad to see in so many churches in the world.
और दुख होता है कलीसियाओं में दुनिया भर में.
That there's so much of division in churches just over titles.
कि कलीसियाओं में इतना अलगाव हो गया है.
We've just lost the sense of purpose of what God wants to do, what Jesus wants to do.
और हम वो मकसद खो बैठे हैं जो प्रभु हमसे चाहता है.
And we are so after titles of leadership or in areas of serving or whatever it is.
और हम इस पदों के लिए ये अगुओं के पदों के लिए या सेविकाओं के पदों के लिए भाग रहे हैं.
Jesus' sole mission was that we come together as one body.
और यीशु का एक ही उद्देश्य था कि एक देह होकर हम साथ हो जाएं.
And their one mission is to go out and reach out to people.
और वह एक मकसद के हम बाहर जाए और लोगों तक पहुंच सके.
We've got to be a people that live a life of mission.
और हमें ऐसे लोग बनना है जो मिशन का जीवन जीते हैं.
That is the primary. That should be our primary goal.
और वही हमारा मुख्य उद्देश्य होना है.
This Jesus who came and gave his life for you and me.
यह यीशु जो आया और उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने
प्राण
दे दिए. And we sang
these songs about the Father.
और हमने ये गीत गाए पिता को लेकर.
And you can imagine the Father sent his only son Jesus to die on that cross.
और आप कल्पना कीजिए कि पिता ने अपने एक लौते बेटे को भेजा ताकि वह क्रूस पे अपने प्राण दे सके.
Because he loved you and me.
क्योंकि उसने आपसे और मुझसे प्रेम रखा.
And he wants each one of us to carry his heart this morning.
और वह चाहता है हम उसके हृदय को लेकर चले इस सुबह.
He wants each one of us this morning.
वो हम सबको चाहता है
to carry his heart.
कि हम उसके हृदय के अनुसार
to go out and reach out to the lost and bring them into the kingdom.
ताकि हम बाहर जाए भटके हुओं को ढूंढकर उसके राज्य में.
That's why you and I are saved.
और इसीलिए आपका और मेरा उद्धार हुआ है.
You know, Ajay started off with that word that we are called to be a people that go.
और अजय ने उस वचन के साथ शुरुआत की कि हमें बुलाया गया ऐसे लोग बनने के लिए कि हम जाए.
Jesus's mindset was a mindset of a mission. He was on a mission. He was on a purpose.
और यीशु का लक्ष्य था वो एक मिशन का लक्ष्य था. वह एक कार्य के लिए आया था.
Amen. If I were to ask you a question this morning.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इस
what's your mission statement in life?
आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है जीवन?
When you gave your life to Jesus.
जब आपने यीशु को अपना जीवन दिया.
What is it that you gave your life to?
तो आपने अपना जीवन क्यों दे दिया?
We've not given our life to be only happy and to only make a lot of money and be comfortable where we are. That's not what we've given our life for.
हमने खुश रहने के लिए पैसे कमाने के लिए या आराम का जीवन पाने के लिए जीवन यीशु को नहीं दिया.
No, that's not why we've accepted Jesus.
नहीं, वह कारण नहीं है हमने यीशु को स्वीकार नहीं किया. लेकिन बहुत बड़ी वजह है.
There's something more to it.
एक बड़ी वजह है.
It's not only about being successful in our businesses, in our jobs, in our careers or in life.
हम काम में जीवन में प्रसिद्धि पाए इसलिए नहीं.
There is something more to accepting Jesus as Lord and Savior.
और बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण हमने यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया.
And if you want to know and if you don't know what your mission statement is.
और यदि आप जानना चाहते हैं और नहीं जानते आपका मिशन क्या है.
Maybe a good place to start is.
और अच्छी जगह अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं
तो is to ask yourself.
आप अपने आप से पूछे.
That if you were to die tonight.
यदि आप आज मरने वाले होते
तो. What is it that people would want to write on your tombstone?
तो लोग क्या चाहेंगे आपके कब्र में क्या लिखेंगे आप क्या चाहते हो.
What is it that you would want them to write about yourself?
चाहते हो आपके बारे में वे आपकी कब्र पर क्या लिखे.
In loving memory of so and so.
और खूबसूरत यादों में ये बात लिखी.
Reached out to 100 people and saved 100 souls.
और ये 100 लोगों तक गया और उन्होंने उद्धार पाया.
What is your mission statement? What is it that you would want?
आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? आप क्या चाहते हैं लोग आपकी कब्र पर क्या लिखे?
You know when Peter is writing this letter.
आप जानते हैं पत्रस जब यह खत लिख रहा है.
He's writing this letter with the end in mind and saying that we have very little time.
और वह अंत को अपने दिमाग में रखते हुए लिख रहा है कि हमारे पास बहुत थोड़ा समय है.
You know if I would stretch a rope from one corner to another corner.
अगर एक रस्सी में यहाँ इस छोर से उस छोर
The life that we have on this planet Earth is just this much.
और जितना जीवन हमारे पास इस पृथ्वी पर है वह केवल इतना ही है.
And in this much of life, we've got to make a massive impact in the place that God's placed each one of us.
इतने जीवन में आपको आप जहाँ पर परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है वहाँ पर आपको बड़ा प्रभाव लेकर आना है.
And I want to share a story of Joe Mardy, who was an American soldier.
और जो एक अमरीकी सैनिक था मैं उनकी कहानी आपसे बांटना चाहता हूँ.
During an intense battle that involved about 12 hours.
और एक बड़े युद्ध में जो 12 घंटों के लिए चला वहाँ पर.
He saw dead bodies around him.
उसने देखा मरे हुए सैनिक उसके आसपास में थे.
And he would radio back to the headquarters saying that so many of his colleagues have died.
और वह हेडक्वार्टर पर ये बात करते हुए कहता कि कई ऐसे उसके साथ में थे वो मर गए हैं.
And sometimes he would pick up these dead bodies and help them bring them back to the base camp.
और कभी कभी वो शरीरों को उठाकर फिर से कैंप में ले जाना
पड़ता.
और जो जब कैंप में लौटा तो उनके कप्तान ने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो.
He said, yeah, I'm all right, but do you think we did well today in the battle?
उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन क्या आपको लगता है युद्ध में हमने अच्छा किया आज.
He says, I mean, do you think we did better than the Iwo Okinawa guys who fought the battle and gave their lives? Do you think that we did better than them?
तुम्हें लगता है हमने Iwo Okinawa जैसे लोगों से भी बेहतर किया है जिन्होंने पहले युद्ध
लड़े? Did we do our part well in this battle?
तुम्हें लगता है कि हमने हमारे किरदार अच्छी तरह से निभाया?
Yeah, if you look at Joe, if I was in Joe's place, I would think, should I even go back again into the battle because I don't know if I'm going to come alive.
मैं जो की जगह पे होता तो मैं शायद लौट कर युद्ध में जाना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता नहीं मैं जीवित आऊंगा क्या नहीं.
Maybe even if I come back alive, I don't know if I'll have my limbs in place.
और मैं अगर लौट कर आ भी गया मुझे पता नहीं कि मेरे पैर जगह पर होंगे भी या नहीं.
What is it that made Joe to think about his service more than his life?
और कौन सी बात है कि जो ने अपने कार्य के लिए ज्यादा सोचा अपने जीवन से बढ़कर.
He was completely sold out into the mission that he was.
और अपने मिशन के लिए उसने अपना जीवन दे दिया था पूरी तरह से.
And we've got to think.
और हमें भी सोचना है.
Are we sold out to what we, the reason for which we accepted Jesus?
क्या हम भी यीशु के लिए बिक गए हैं अपना जीवन हमने दे दिया है उस कार्य के लिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है.
Joe was willing to die for a cause.
और जो एक मकसद के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए भी तैयार थे.
Are you and I willing to die for the
क्या
sake
आप
of the
और मैं सुसमाचार के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए भी तैयार है.
Have a mindset of a soldier. Peter talks about a mindset of a soldier.
और पत्रस कहता है एक सैनिक की तरह आपका मन बनाओ.
Have the mindset of Christ. What was the mindset of Christ?
और यीशु की तरह मन. यीशु का मन क्या था?
His mindset was to come to the lowest level and serve.
और उसका मन यह था कि बिल्कुल निचले स्तर तक आकर वह सेवा करना
His
चाहता
mindset
था.
Was that I want to give my life for this people.
और उसका मन यह था कि मैं अपने लोगों के लिए मेरा जीवन
And
देना चाहता
हूं. This morning God wants to encourage us as a church to have that mindset of Christ.
और मुझे लगता है सुबह परमेश्वर कलीसिया को प्रोत्साहन देना चाहता है कि आप भी अपना मन यीशु की तरह
बनाओ. We see some of the great figures in our nation, Mahatma Gandhi or Mother Teresa or Nelson Mandela. They had a cause for which they gave themselves to.
ऐसे महान लोग महात्मा गांधी या मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपना जीवन बड़े कार्यों के लिए दे दिया.
The great apostle Paul, we see he writes in Philippians 3:8.
और बड़ा प्रेरित पौलुस भी फिलिपियों की किताब में यह लिखता है.
He says, I consider myself nothing else in life as excellent as the knowledge of Christ Jesus my Lord.
और मैं अपने आप को जीवन में कुछ भी नहीं समझता, लेकिन यीशु मसीह की समझ रखना वह मेरे लिए बड़ी बात है.
For whom I have lost all things and count them as rubbish that I may gain Christ.
जिसके लिए मैंने सभी बातों को खो दिया, उसे कचरा समझता हूँ, ताकि मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं.
You know, Peter is saying, be consumed by the things of God and not by the things of the world.
और पत्रस बता रहा है कि प्रभु की बातों से भर जाओ, लेकिन संसार की बातों से नहीं.
You know, Paul was radically changed because of an encounter like Franco spoke about this morning. Abraham had an encounter with God.
और पौलुस पूरी तरह से बदल गया जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई, जैसे फ्रैंको आज बता रहे थे.
And what's going to change us radically is that encounter with God.
और वह बड़ा बदलाव हमें कब होगा? तब ही जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं.
Or we can be Christians coming Sunday after Sunday and sitting and going back and doing nothing.
या हम ऐसे मसीह हो सकते हैं जो रविवार दर रविवार कलीसिया में आए और घर लौट जाते हैं और कुछ भी नहीं करते.
Be consumed by the purposes of God.
परमेश्वर के मकसदों से अपने आप में आप भर जाओ.
And this morning I want to say, church, let's rise up.
और इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ, कलीसिया तैयार हो जाओ.
We've got a job in our hands to make disciples.
और यह काम हमारे हाथ में है कि हम शिष्य बनाएं.
We've got a job in our hands to transform lives, to transform nations, to transform cities and to transform villages.
और यह काम हमारे हाथ में है कि हम राष्ट्रों को, शहरों को, नगरों को जाकर हम बदल दें.
And it will only happen if we put God first and up all our worldly priorities at the side.
और यह तभी होगा तब आप जब परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं.
You know, Jesus's attitude was sacrificial.
और यीशु का स्वभाव बलिदान देने पूर्वक था.
I want to share a story of Eric Liddell. He was an athlete.
और मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको.
Eric Liddell is his name.
Eric Liddell उनका नाम है.
And this guy was an athlete in UK.
और वह परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता ऐसा व्यक्ति था यूके में.
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट.
माफ करना, वह दौड़ने वाला था और वह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था.
But he was a guy who loved Jesus.
लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो यीशु से बेहद प्रेम करता
था. His speciality was to run the 100 meters race.
और उसका यह खास बात थी कि वह चाहता था कि वह 100 मीटर की दौड़ दौड़े.
And everyone knew that if he would run 100 meters, he would win the gold medal.
और सभी जानते थे यदि वह दौड़ दौड़ेगा 100 मीटर की तो
But
गोल्ड मेडल वही जीतेगा.
When it was the time of Olympics,
लेकिन जब ओलंपिक का समय आया तो
his 100 meters race was supposed to happen on a Sunday.
वह 100 मीटर की दौड़ रविवार के दिन होने वाली
थी. But Eric Liddell was so sold out to the church and the things of God.
लेकिन कलीसिया के लिए उन्होंने अपने आप को इतना अर्पित कर दिया था.
I did not to run in the 100 meters race, but he said, I will take part in the 400 meters, which is not his strength.
उन्होंने ये तय किया कि वह रविवार को जो 100 मीटर की दौड़ थी वह नहीं दौड़ेंगे, लेकिन वो 400 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे.
He not only ran 400 meters race, but he won the gold medal.
और वो दौड़ उन्होंने दौड़ी और वह जीत भी गए.
I would find it difficult and very hard if I was in Eric Liddell's place to make that shift and say, no, I'm going to go and run the race and not be here on a Sunday morning.
अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं ये तय करता कि मैं रविवार को जाऊंगा और दौड़ूंगा. शायद वो मन परिवर्तन मुझ में नहीं आता.
He returned to China as a missionary in 1925 to serve as a missionary teacher there.
और वो चाइना में लौटे ताकि वह मिशनरी टीचर बनकर वहां पर कार्य कर सके.
You know, how many of us take sometimes church so casually and we think it's okay not to come on a Sunday morning.
और हम में से कितने रविवार को कलीसिया बस ऐसे ही लेते हैं, ठीक है अगर हम नहीं आते एक रविवार.
Maybe I'll come on a Sunday morning, but I'm so tired. I don't think I'll serve this Sunday. Maybe some other Sunday.
मैं रविवार को आ भी जाऊँ तो मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं सेविकाएं करना नहीं चाहता. शायद कभी अगले रविवार को कर लूँगा.
Jesus's attitude was sacrificial, and that's the mindset we've got to have.
और यीशु का स्वभाव बलिदान पूर्वक था और वैसा ही स्वभाव हमें रखना है.
Life that's completely sold out. to church.
और ऐसा जीवन जो कलीसिया के लिए बिक जाए या पूरी तरह से अर्पित हो जाए.
You know, when we talk about church, we can think church as a building, a place where we can come when we want and we can not come when we don't want to.
हम कलीसिया को ऐसी इमारत भी समझ सकते हैं कि हम आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी.
But the Bible says Jesus died for the church.
लेकिन शास्त्र कहता है कि यीशु ने कलीसिया के लिए प्राण दे दिए.
He didn't die for a building.
वह एक इमारत के लिए नहीं दिए.
He died for you and me because he loved us so much.
उसने हमारे लिए प्राण दिए क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता
है. And we've got to be a people who come with that servant heart.
और हमें ऐसे लोग बनना है जो ऐसा सेवा का हृदय लेकर आते हैं.
The overarching mission of Jesus was the great commission that he called us all to.
यीशु का वह बड़ा मिशन यह था जिसके लिए उसने हमें बुलाया है.
You know, my second point is living a life of mission requires an attitude of action.
और मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसा जीवन जो मिशन के लिए जिए उसके लिए हमें कार्य भी करना है.
And we see two many instructions that Peter gives in his letter.
और दो ऐसी बात जो पत्रस अपने खत में लिखते हैं.
But I'm very briefly going to speak about two actions which is going to be the key for us.
जो हमारे लिए मुख्य बात होगी उसको मैं आपसे बांटना चाहता
हूँ. One of the actions is Peter encourages us to have a disciplined life of prayer.
और एक ऐसी क्रिया है कि हमें अनुशासन रखना है हमारे प्रार्थना के जीवन में.
Prayer is the wings that faith flies on.
और प्रार्थना वही पंख है जिसके ऊपर विश्वास उड़ान भरती है.
Which means that when faith gets into prayer, it will produce results.
जब विश्वास प्रार्थना में बदल जाता है तो बातें हो जाती
है. You know, one of the things that the enemy keeps distracting us is in the area of prayer.
और एक बात जिसमें शैतान विलंबना लाता है, हमारा ध्यान भटकाता है, वो प्रार्थना के जीवन में.
But right through the New Testament, we see, and even in the Old Testament, men of God gave themselves to prayer. We see Jesus himself went to a solitary place to spend time with his Father.
आप देखें नए करार से पुराने करार तक लोगों ने प्रार्थना में अपना जीवन दिया. यीशु भी अलग होकर प्रार्थना में समय बिताते थे.
We see that Jesus in John 17 is praying for his disciples.
और यूहन्ना 17 में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं.
He's praying for future believers.
और आने वाले विश्वासियों के लिए वह प्रार्थना करते हैं.
And church, we have such an important role to play in the area of prayer.
और कलीसिया हमारे पास इतना मुख्य किरदार है कि हम प्रार्थना करें.
In Isaiah 62:6-7 says, "O Jerusalem, I have posted watchmen on your walls."
और यशाह 6 में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे दीवार पर ऐसे सैनिक रखे हैं.
They will pray day and night continually.
अगर आप दिन रात लगातार प्रार्थना करते हैं.
Take no rest at all who you pray to the Lord.
और यदि आप बिल्कुल आराम न करें और परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना करते रहे,
Lord no rest until he completes his work.
और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे,
until he makes Jerusalem the pride of the earth.
जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे.
Is an encouragement to be a people that pray day and night. It says, what's amazing is give the Lord no rest. I mean, that's so amazing.
ऐसे लोग बनना जो दिन रात प्रार्थना करते हैं. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आप परमेश्वर को आराम न दे.
There's a promise that God's given each one of us.
और ऐसा वादा परमेश्वर ने हर एक से किया है.
There's a promise that God's given one nation.
और ऐसा वादा जो परमेश्वर ने एक राष्ट्र से किया.
There's a promise that God's given us as individuals, as families.
और ऐसा वादा जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में और परिवार.
But he says, don't take rest in the area of praying. We got to pray continually.
और यहाँ पे लिखा है प्रार्थना के क्षेत्र में आप आराम ना करें पर लगातार आप प्रार्थना करते
रहें. We see the same pattern in Isaiah 58.
और यशाया 58 में भी वह बात हम देखते हैं.
Yeah, we've got to stand in the gap and pray to see people being released.
कि हमें खड़े रहकर बीच में मध्यस्थी करना है लोगों के लिए ताकि लोग छुटकारा पाएं.
You know, in Mira Road, like Pankaj mentioned, we are 18 of us, including kids.
और मीरा रोड में हम 18 है, जैसे पंकज ने बताया, बच्चों को मिलाकर.
You know, and I've encouraged the group there to say, if we want to see visitors come in, unbelievers saved.
और मैंने प्रोत्साहन दिया है ये समूह को कि यदि हम चाहते हैं लोग उद्धार पाए और नए लोग आए,
we've got to lift them up in prayer.
तो हमें उन्हें प्रार्थना में उठाना है, प्रार्थना करना है लगातार.
But we've also got to do something.
लेकिन हमें कुछ करना भी पड़ेगा.
And the strategy is simple.
और रणनीति बहुत ही साधारण है.
If we are 10 of us, for example,
यदि हम 10 हैं उदाहरण के तौर पर,
let's take two people on our list.
दो लोगों को ले लेते हैं हमारी लिस्ट में.
Two people per person.
एक व्यक्ति दो व्यक्ति लेगा.
It takes the count to how much?
तो कितने लोग हो जाते हैं?
20.
20.
We can pray daily and fast for these two people.
हम हर रोज उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उपवास भी कर सकते
हैं. We can reach out to them and build friendship with them.
हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ा सकते हैं.
If you take a church like One Nation, which is maybe, I don't know, what's your number?
अगर हम एक राष्ट्र कलीसिया को देखें तो.
But if you take 100 of us.
यदि हम 100 को ले ले,
or just 50 of us,
या 50 ले ले,
and each of us take that responsibility, saying, I'm going to take carry two people in prayer.
और यदि हर एक ये जिम्मेदारी ले ले के मैं दो व्यक्तियों के लिए प्रार्थना
करूंगा. And I'm going to consciously and purposefully, like Peter says, be conscious and be purposeful in your action.
और मैं समझ कर और मकसद के रूप में ये कार्य करूंगा.
And if that 50 of us reach out to two and pray for two,
और हमें से 50 यदि हर एक दो दो के लिए प्रार्थना करें,
you can see what will happen.
आप सोचो क्या हो जाएगा.
Amen. It's a simple thing.
ये साधारण सी चीज़
है. Peter is encouraging us to be intentional about what he wants, what God wants us to do.
लेकिन पत्रस हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि आप इस बात को जानबूझकर करें जो परमेश्वर चाहता है.
So
कि
each
आप
of us have got two on our minds in Mira Road.
तो हर एक के पास दो व्यक्ति है मीरा रोड में.
And we've already intentionally made attempts to meet them. Most of us have met these two people.
जानबूझकर मकसद रूप से हम जाते हैं इन दो को मिलने के लिए.
And we are praying for them.
और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं.
We've got 7 visitors coming out of the 24.
और 24 में से 7 नए लोग आए हैं.
And I'm believing even as we continue to be faithful in this very small thing that God's laid on our hearts, and will you, God's going to give us more.
और मेरा ये विश्वास है कि जैसे हम विश्वास योग्य रहेंगे इस बात में परमेश्वर हमें और दे देगा.
You know, we got to pray. When I want to share this small testimony is one of the members of our team.
और मैं छोटी गवाही बांटना चाहता हूँ. हमारा सदस्य समूह का एक सदस्य है.
Got an opportunity to pray for a lady who just came at her door to collect garbage.
और हमारे कलीसिया के दरवाजे पर वह कचरा उठाने के लिए आई थी महिला.
And this lady had a swollen face and she was supposed to see the doctor in the evening.
और उसका चेहरा सूजा हुआ था और वह डॉक्टर के पास जाने वाली थी शाम
को. But this lady said, "Can I pray for you?"
और इस महिला ने कहा, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर
so
सकती
हूँ? So she prayed for her in the evening.
तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना
की. So next morning she came again.
और अगले दिन वह फिर से आई.
And this lady, when she came, she was so amazed. She said, I don't know what you did. You put your hand on my face and said something, and you know the swelling is gone.
और वो महिला इतनी आश्चर्यचकित हो गई. पता नहीं तुमने क्या किया. अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और सूजन चली गई.
But that's not it. She went to the 10th floor lady.
और लेकिन ऐसा इतना ही नहीं, वो 10वें मंजिल पे गई.
And she started testifying on what happened to her.
और जाकर उसने बताया क्या उसके साथ हुआ था.
A small step of being faithful and praying for this lady.
और ये छोटा सा कदम विश्वास योग्य पूर्वक इस महिला के लिए प्रार्थना
करना. Led this lady to go to the 10th floor family.
और वो 10वें मंजिल पर गई उस परिवार के पास.
And talk about what happened.
और उसने बताया जो हुआ.
And now there's a relationship that's begun with the 10th floor lady and this member of our group.
और 10 मंजिल पर जो महिला रहती है और ये महिला जो हमारे समूह में है उनके बीच अब एक रिश्ता बन गया है.
The small steps of faith.
छोटे छोटे विश्वास के कदम.
Can create massive impacts.
और उससे बड़ा प्रभाव हो सकता है.
And the last action that I want to talk about that Peter talks about is using gifts. And somebody made that prayer, shared the prophetic word this morning about gifts being used.
और अगला जो क्रिया पत्रस बताता है वो करना है कि हमारे वरदानों का हमें इस्तेमाल करना है.
You know, many people come with a mentality of being an audience.
और कई लोग ये मनसा से आते हैं कि हम ऑडियंस है, हम देखने वाले
हैं. लेकिन
हम ऑडियंस नहीं है, उससे हमें बाहर निकल के समझना है कि हम भाग लेने वाले हैं.
Jesus came to serve and not to be served.
अब देखो, यीशु आया कि वो सेविकाएं करे, इसलिए नहीं कि वो सेवा प्राप्त करे.
It doesn't matter how big your gift is.
और वो उससे कुछ मायने नहीं रखता कि आपका वरदान कितना बड़ा है.
And this morning I want to just stir us up.
और इस सुबह में आपको प्रोत्साहन देना चाहता
हूं. Everybody has a gift. God has given a gift to each one of us sitting here.
कि परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है, हर एक जो यहां पर बैठा है.
Each one of us has got a gift that God has given.
हर एक के पास वह वरदान है जो परमेश्वर ने उसे दिया है.
And I remember the story of this little boy who came with 5 loaves of bread and 2 fish.
और मुझे ये छोटा लड़का जो 5 मछली 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था.
And one might seem that what he had in his hand was just a tiffin box.
और उसके हाथ में खाली सिर्फ उसका डब्बा था, टिफिन था.
But he was willing to give that to Jesus.
लेकिन वह यीशु को देने के लिए बिल्कुल
तैयार था. He said, "Lord, this is all that I have. I'm willing to give it to you."
और उसने कहा, प्रभु मेरे पास इतना ही है और मैं तुझे देने के
and
लिए
तैयार
हूँ.
When the Lord placed his hand upon this little,
और जब प्रभु ने इस थोड़े पर अपना हाथ रखा,
it fed the multitudes, the thousands were fed.
तो उसे हजारों को खिलाया गया था.
And can we take this moment right now, just this brief moment?
तो क्या अब वो क्षण हम ले सकते हैं?
Shut your eyes.
अपनी आँखों को आप बंद रखें.
Just put your hands before you.
और अपने हाथ अपने ऊपर रखें.
You know, just feel those gifts that God's given you.
और जो वरदान प्रभु ने आपको दिए उसे महसूस
करें. He's given you gifts that some of us have not used for years.
और उसने आपको ऐसे वरदान दिए हैं जो आपने शायद कई सालों के लिए इस्तेमाल नहीं किए.
But I believe the Holy Spirit wants you to feel the weight of His gift.
लेकिन मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा आपको इस वरदान का बोझ महसूस कराए.
He has equipped you for a life of a mission.
उसने आपको तैयार किया है मिशन के जीवन के
And
लिए.
He wants these gifts to be used.
और वो चाहता है कि यह वरदानों का इस्तेमाल हो.
He wants us to take them off the shelf.
वो चाहता है कि हम उन वरदानों को बाहर निकाले.
What might seem to be little in our hands,
जो हमारे हाथों में थोड़ा लगता है, छोटा लगता है,
is powerful in the hands of our Savior.
और वो हमारे उद्धारकर्ता के हाथ में सामर्थ्यशाली है.
Just a few stones and a sling in the hands of David.
और दाऊद के हाथ में कुछ पत्थर.
Seem to be so silly amongst his brothers.
और उसके भाइयों के बीच यह बहुत ही हंसने वाली बात लगती थी.
But the little that we have in our hands,
लेकिन हमारे पास भी जो थोड़ा है हमारे हाथों में,
God can do much.
प्रभु उसको लेकर बहुत कुछ कर सकता है.
Just feel that weight. Just feel the weight.
उसका वजन आप महसूस करें उस वरदान का.
Just feel the weight.
उस वरदान के वजन को महसूस करें.
The staff in Moses' hand was probably used to take care of cattle.
और मूसा के हाथ में जो लाठी थी उससे वह भेड़ बकरियों की देखभाल करता था.
The same staff was used to part the Red Sea.
और वही लाठी का इस्तेमाल हुआ कि लाल समुद्र को दो भागा जाए.
Friends, don't despise that small gift, the small thing that God's placed in your hand.
दोस्तों, जो छोटा वरदान प्रभु ने आपको दिया है उसे आप छोटा नहीं समझें.
It's meant to create a massive impact in somebody else's life.
उस वरदान के द्वारा किसी और के जीवन में बढ़ा प्रभाव हो जाएगा.
Will you step out like Ajay encouraged us? Step out and go.
क्या आप आगे कदम उठाएंगे जैसे अजय ने हमें प्रोत्साहन दिया, कदम उठाओ और जाओ.
We need to bring a small offering to Jesus.
हमें वो छोटा दान देना है यीशु को.
A small gifts to him.
हमारे छोटे वरदान.
And when he places his hand on those small gifts,
और जब वह अपना हाथ रखेगा उन छोटे वरदानों पर,
it grows,
वह बड़ा हो
it
जाएगा,
multiplies,
वह बहुगुणित हो जाएगा.
You know, some gifts are gifts that can be seen in the front.
और कुछ ऐसे वरदान है जो आगे देखे जाते
हैं. And the danger is to always look at gifts that are so visible right in the front. It could be leading worship or playing an instrument or preaching.
और खतरा है कि हमेशा आगे के वरदान को देखना, जैसे आराधना की अगुवाई, प्रचार करना, वो सारी बातें.
And we are so bombarded with television when we look at various channels.
और जब हम टीवी देखते हैं, इतने चैनल देखते हैं, वो बातें.
And we always see the big stage there. We see massive bands playing there.
और हम बड़ा स्टेज देखते हैं, बड़े बैंड वहाँ पर,
and we see big preachers there.
बड़े प्रचारक वहाँ पर होते हैं.
And we can get so disillusioned about what church is all about.
और कलीसिया को लेकर हम इतना हमारा जो मन है वो भटका सकते
हैं. And we can make that as our goal.
और उसे हम हमारा उद्देश्य बना सकते हैं.
You know, D.L. Moody writes this.
और D.L. Moody यह लिखते हैं.
He says, I cannot do everything.
वो लिखते हैं कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता।
I can do something.
लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ।
And that which I can do.
और वह जो मैं कर सकता हूँ।
I do by the grace of God.
वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करता हूँ।
With that very simple commitment.
और वह छोटे commitment से।
God used him to bring revival in England and America.
परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया कि इंग्लैंड और अमेरिका में वह जागृति लेकर आए।
Another statement from George Whitefield.
और जॉर्ज व्हाइटफील्ड ने और एक वाक्य कहा।
He says, I'm weary of doing thy work.
और उसने कहा कि मैं तुम्हारा कार्य करते हुए थक गया हूँ।
But not of it.
लेकिन उससे बाहर नहीं निकला।
And Peter says, God will supply all that we need.
और पतरस कहता है कि परमेश्वर हमें सारे साधन दे देगा।
You know, Peter starts this letter by saying, "Living in the grace of God."
और पत्रस यह खत यह लिखकर शुरुआत करता है परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करना।
You know, the grace of God is not for us to be complacent.
और परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं कि हम ऐसे ही बैठे रहे।
The grace of God is God's empowering power.
और परमेश्वर का अनुग्रह यह है परमेश्वर का जो सामर्थ्य हम में आता है कार्य
over our lives to go beyond our natural self. That is what grace is all about.
हमारे जीवन पर ताकि हम बाहर जाकर कार्य करें।
And we see so many stories in the Bible where God used the weak people.
और हम इतनी कहानियां देखते हैं शास्त्र में जहां पर परमेश्वर कमजोर लोगों का उपयोग करता है।
To do massive exploits.
ताकि वह बड़े-बड़े कार्य कर सके।
Amen. This morning God's not looking at talented people.
और इस सुबह परमेश्वर ऐसे जिनके पास बहुत बड़े-बड़े गुण हैं ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है।
I'm not saying that we don't need talented people.
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें गुणी लोगों की जरूरत नहीं
है। But God's looking for the ones who are available.
लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो
God's looking for the ones who will say, Lord, here I am, use
me. और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कहेंगे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ मेरा इस्तेमाल करो।
And when we come with that posture,
और जब हम उस स्वभाव से आते हैं,
He pours out His empowering grace over us.
तो वह उसकी तैयार करने वाले अनुग्रह को हम पर उतारता
है। His empowering ability that will propel us to go beyond our own self.
और वह क्षमता हमें देता है कि हम जो है उससे हम आगे बढ़ जाए और बड़े कार्य करें।
Amen.
Amen.
Let me all stand.
क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं?
And just talk to the Lord for a brief moment.
और परमेश्वर से आप एक क्षण के लिए बातें करें।
Say, Lord, I want to commit my life to mission.
और कहो प्रभु मैं मिशन के लिए मेरा जीवन देना चाहता
हूँ। I want to give my life. I want to be completely spent on the church.
और मैं मेरा जीवन बस कलीसिया के लिए व्यतीत करना चाहता हूँ।
Say, Lord, this is what I want to live and die for.
और कहो प्रभु इसी वजह के लिए मैं जीना और मरना चाहता हूँ।
Maybe some of us have been Christians for really, really long time.
और शायद हम में से कुछ मसीह लोग हैं कई वर्षों से।
But we really just held back.
और हमने अपने आप को थाम कर रखा है पीछे रहे हैं।
We've not fully given ourselves.
और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के राज्य के लिए नहीं दिया।
And this morning, just make that prayer.
और इस सुबह बस वह प्रार्थना करो।
And recommit your life.
और अपने जीवन को दोबारा प्रभु को अर्पित कर दो।
Resurrender our lives.
फिर से प्रभु को जीवन समर्पित कर दो।
And say, Lord, here I am.
और कहो प्रभु मैं यहाँ हूँ।
I'm willing to do all that you want me to do.
जो आप चाहते हैं वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ।